चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 16 महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपनी दृष्टि रूपी अमृत से गौड़ देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को जीवन प्रदान किया जो लताओं तथा वृक्षों की भांति भौतिक अस्तित्व की दावा अग्नि से जल रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया तो महाराज प्रताप रुद्र यह समाचार सुनकर अत्यंत खिन्न हो उठे। अतएव राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय को बुलवा भेजा और उनसे विनीत शब्द कहे। महाराज प्रताप रुद्र ने कहा, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि अब वे अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना मेरा यह राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अतएव ऐसा उपाय करें कि महाप्रभु यहीं रुके रहें। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा सार्वभौम से परामर्श किया और कहा, मैं वृंदावन जाऊंगा। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे सर्वप्रथम रथ यात्रा उत्सव मना ले, तब कार्तिक मास आने पर वृंदावन जाएं। किंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से कहा, अब बहुत झाड़ा पड़ रहा है, अच्छा हो यदि आप धूल यात्रा उत्सव देख कर जाए, यह अत्युत्तम रहेगा। इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की अनुमति न देने के लिए अनेक अवरोध उपस्थित किए। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उनके विक्षोह से भयभीत थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उन्हें रोक पाने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु तो भी वे अपने भक्तों की अनुमति के बिना नहीं गए। तीसरे वर्ष भी बंगाल के सारे भक्त पुनः जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। सारे बंगाली भक्त अद्वैत आचार्य के पास आए और अद्वैत आचार्य अत्यंत उल्लास पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। यद्यपि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहकर भगवत प्रेम का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। भला नित्यानंद प्रभु के प्रेम भाव को कौन समझ सकता है। आचार्य रत्न, विद्यानिधि, श्रीवास, रामाई, वासुदेव, मुरारी, गोविंद तथा उसके दो भाई एवं राघव पंडित समेत नवद्वीप के सारे भक्त जन चल पड़े। राघव पंडित अपने साथ विभिन्न प्रकार के भोजन के झोले लेकर चल पड़े। कुलीन ग्राम के निवासी भी रेशमी रश्मियां लेकर चल पड़े। खंड ग्राम के निवासी नरहरि तथा श्री रघुनंदन एवं अन्य अनेक भक्त भी रवाना हो गए। भला उनकी गिनती कौन कर सकता है। शिवानंद सेन पर सारी टोली का भार था। उन्होंने कर वसूले जाने वाले स्थानों पर कर चुकाए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने सारे भक्तों की निगरानी का जिम्मा ले रखा था और उनके साथ वे सुख पूर्वक यात्रा कर रहे थे। शिवानंद सेन भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते, विशेष रूप से उन्होंने उनके रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की और वे उड़ीसा के सभी मार्ग जानते थे। उस वर्ष भक्तों की पत्नियां ठाकुरानियां भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैत आचार्य के साथ गई। श्रीवास पंडित अपनी पत्नी मालिनी को ले गए और शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ गई। शिवानंद सेन का पुत्र चैतन्य दास भी परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के दर्शन की इच्छा से उन सब के साथ जा रहा था। चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी भी गई। महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है। महान भक्तों की सारी पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मन पसंद वस्तुएं ले आई थी। जैसा कहा जा चुका है, शिवानंद सेन ने टोली की सभी आवश्यकताओं का प्रबंध किया। विशेषतया वे कर वसूल करने वाले व्यक्तियों को शांत करते और हर एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते थे। शिवानंद सेन सभी भक्तों को भोजन देते थे और रास्ते भर उनकी देख रेख करते थे। इस तरह वे परम प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। जब वे सब रेमुणा पहुंचे तो सारे लोग भी गोपीनाथ का दर्शन करने गए। वहां मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया और गाया। मंदिर के सारे पुजारी श्री नित्यानंद प्रभु से पहले से परिचित थे। अतएव वे सब आए और उन्होंने प्रभु का बहुत सम्मान किया। उस रात सारे बड़े बड़े भक्त मंदिर में रहे और पुरोहितों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रख दिए। नित्यानंद प्रभु ने इस खीर को प्रसाद रूप में हर एक को बांट दिया। इस तरह हर एक का दिव्य आनंद बढ़ गया। तब सब ने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना की कहानी की चर्चा की और इसकी भी चर्चा की कि किस तरह गोपाल ने उनसे चंदन मांगा था। गोपीनाथ ने ही माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पहले कर चुके थे। यही कथा भगवान नित्यानंद ने सारे भक्तों को फिर से सुनाई। इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का दिव्य आनंद बढ़ गया। इस तरह चलते चलते भक्तगण कटक शहर पहुंचे, जहां पर वे एक दिन रहे और उन्होंने साक्षी गोपाल का मंदिर देखा। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कार्यकलाप कह सुनाए तो सारे वैष्णवों के मनों में दिव्य आनंद उमड़ आया। टोली के सारे लोग महाप्रभु को देखने के लिए मन में बड़े उत्सुक थे। अतएव वे जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी की ओर चले। जब वे सब आठार नाला नामक पुल पर आ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों दो फूल मालाएं भेजी। गोविंद ने वे दोनों मालाएं अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को भेंट की। इससे वे दोनों अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वे उसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया और अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही नाचते नाचते जगन्नाथपुरी पहुंचे। तब दूसरी बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर तथा अपने अन्य निजी संगियों के हाथों मालाएं भेजी। सती माता के पुत्र द्वारा भेजे जाने से वे सभी आगे बढ़े। जब बंगाल से आने वाले भक्त नरेंद्र सरोवर पहुँचे तो स्वरूप दामोदर तथा अन्य लोग उनसे मिले और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई मालाएं भेंट की। जब भक्तगण सिंह द्वार के पास पहुँच गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना और वे स्वयं उनसे मिलने गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। अंत में वे उन सब को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान लौट गए। तब वाणीनाथ राय तथा काशी मिश्र बड़ी मात्रा में प्रसाद ले आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद को अपने हाथों से सबको बांटा तथा खिलाया। पिछले वर्ष हर एक को विशेष निवास स्थान मिला था, उसे वही स्थान पुनः दिया गया। इस तरह वे सभी आराम करने चले गए। सारे भक्त लगातार 4 माह तक वहीं रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आनंद लेते रहे। जब रथ यात्रा का समय आया तो सब ने पिछले वर्ष की तरह गुंडीचा मंदिर की सफाई की। कुलीन ग्राम के निवासियों ने रेशमी डोरियां जगन्नाथ जी को भेंट की और पहले की तरह वे सब भगवान के रथ के आगे नाचे। काफी नाचने के बाद सभी निकटवर्ती बगीचे में गए और उन्होंने सरोवर के तट पर विश्राम किया। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण जो राड़ देश का रहने वाला था और नित्यानंद प्रभु का सेवक था, महाभाग्यशाली व्यक्ति था। कृष्णदास ने एक बड़े पात्र में जल भरकर महाप्रभु के ऊपर डालकर स्नान कराया। इससे महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हो गए। तभी बलगंडी में भगवान का अर्पित काफी प्रसाद आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सभी भक्तों ने ग्रहण किया। पिछले वर्ष की तरह महाप्रभु ने सारे भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव तथा हीरा पंचमी उत्सव भी देखा। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्तिवश अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह में वे माता तुल्य थी। चंद्रशेखर, आचार्य रत्न आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते रहते। चातुर्मास्य बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से फिर परामर्श करने लगे, किंतु कोई यह नहीं जान सका कि वे क्या परामर्श करते थे। तब श्रील अद्वैत आचार्य ने इशारों से चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद्य पढ़े जिन्हें कोई समझ नहीं सका। अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। यह जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। यह कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तुम सब से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करो। प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी न आओ, अपितु बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे उद्देश्य को वहां पूरा कर सके। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ। प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है, अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है। आप अपनी अचिंत्य शक्ति से जो चाहे तो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूँ। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को विदा किया। पिछले वर्ष की तरह कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु, कृपा करके बताएं कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं? महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना चाहिए और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में चरण प्राप्त हो सकेगी। उस कुलीन ग्राम के निवासी ने कहा, कृपा करके बतलाएं कि वास्तव में वैष्णव कौन है और उसके लक्षण क्या हैं? उसके मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्काने लगे और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। अगले वर्ष भी कुलीन ग्राम के निवासियों ने महाप्रभु से फिर वही प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विभिन्न प्रकार के वैष्णवों के विषय में शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तम कोटि का वैष्णव वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के वैष्णवों, वैष्णव, वैष्णवतर तथा वैष्णवतम की शिक्षा दी। इस तरह उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों को एक के बाद एक करके वैष्णव के सारे लक्षण अच्छी तरह समझा दिए। अंततो गत्वा सारे वैष्णव जन बंगाल लौट गए, किंतु उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में ही रहे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता थी और जहाँ तक कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करने की बात थी वे दोनों ही समान स्तर के थे। पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दोबारा दीक्षित किया और ओडन षष्ठी के दिन उन्होंने उत्सव देखा। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मांड युक्त वस्त्र उड़ाया जाता है तो उनका मन कुछ कुछ घृणा से भर गया। इस तरह उनका मन दूषित हो गया। उस रात को भगवान जगन्नाथ तथा बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर आए और हंस हंस कर उन्हें चपत लगाने लगे। यद्यपि चपत लगने से उनके घाल सूज गए थे, किंतु पुंडरीक विद्या नीति भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे। इस घटना का विस्तृत वर्णन ठाकुर वृंदावन दास ने किया है। प्रतिवर्ष बंगाल के भक्तगण आते और रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ठहरते थे। उन वर्षों में जो कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटी उनका वर्णन बाद में किया जाएगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 वर्ष बिताए। प्रथम 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत के भ्रमण में लगा दिए। अन्य 2 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते रहे, किंतु वे रामानंद राय की चालों के कारण जगन्नाथपुरी छोड़ नहीं पाए। 5वें वर्ष बंगाल के भक्तगण रथ यात्रा देखने आए, किंतु देखने के बाद वे रुके नहीं अपितु बंगाल लौट गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उन दोनों का आलिंगन करते हुए मधुर वचन कहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाने की मेरी इच्छा अत्यंत बलवती हो उठी है। तुम्हारी चालों के कारण मैं विगत 2 वर्षों से वहां जा नहीं पाया। अब मैं अवश्य जाऊंगा। अब तो तुम लोग अनुमति दोगे ना? तुम दोनों के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य आश्रय नहीं है। बंगाल में मेरे 2 आश्रय हैं, मेरी माता तथा गंगा नदी। ये दोनों अत्यंत दयामय हैं। मैं बंगाल होता हुआ वृंदावन जाऊंगा और अपनी माता तथा गंगा नदी दोनों को देखूंगा। क्या अब तुम दोनों मुझे अनुमति दोगे? जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय ने ये शब्द सुने तो वे विचार करने लगे कि यह अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने महाप्रभु के साथ इतनी चालें चली थी। उन दोनों ने कहा, वर्षा ऋतु होने के कारण आपके लिए यात्रा करनी कठिन हो जाएगी। वृंदावन प्रस्थान करने के लिए विजयादशमी तक प्रतीक्षा करना ठीक रहेगा। इस तरह अनुमति प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने वर्षा ऋतु बीत जाने तक प्रतीक्षा की और जब विजयादशमी आई तो वे वृंदावन के लिए चल पड़े। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद एकत्र किया। उन्होंने अपने साथ भगवान का कढ़ार अंजन, चंदन तथा डोरियां भी प्रसाद रूप में ले ली। भोर के समय भगवान जगन्नाथ से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े और उड़ीसा के सारे भक्त भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। चैतन्य महाप्रभु बड़े यत्न से उड़ीसा के भक्तों को अपने साथ चलने से मना कर पाए। फिर वे अपने निजी संगियों के साथ सबसे पहले भवानीपुर गए। जब भगवान चैतन्य भवानीपुर पहुंच गए तो उनके पीछे पीछे रामानंद राय अपनी पालकी पर चढ़कर आए और वाणीनाथ राय ने महाप्रभु के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहां रात भर रहे। प्रातः होते ही वे चल पड़े और अंत में भुवनेश्वर आ पहुंचे। कटक नगर पहुंचकर उन्होंने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। वहां पर स्वप्नेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। रामानंद राय ने अन्य सभी जनों को भोजन करने के लिए निमंत्रित किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर बगीचे में अपना विश्राम स्थान बनाया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बकुल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो रामानंद राय तुरंत महाराज प्रताप रुद्र के पास गए। राजा यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से वहां आए। महाप्रभु को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रेम से विह्वल होकर राजा बारंबार उठते और गिरते रहे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उनका सारा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू बह चले। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतएव उन्होंने उठकर उनका आलिंगन किया। जब महाप्रभु ने राजा का आलिंगन किया तो राजा ने बारंबार प्रार्थना की और उन्हें नमस्कार किया। इस तरह महाप्रभु की कृपा से राजा की आंखों में आंसू आ गए, जिससे महाप्रभु का शरीर नहा उठा। अंत में रामानंद राय ने राजा को सांत्वना दी और उन्हें बैठाया। महाप्रभु ने भी अपने शरीर मन तथा वाणी से राजा पर कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा पर इतनी कृपा प्रदर्शित की कि उस दिन से महाप्रभु का नाम प्रताप रुद्र संत्राता अर्थात महाराज प्रताप रुद्र के उद्धारक पड़ गया। सारे सरकारी अधिकारियों ने भी महाप्रभु को नमस्कार किया और तब शची पुत्र महाप्रभु ने राजा तथा उनके व्यक्तियों को विदा किया। राजा बाहर गए और उन्होंने आदेश पत्र लिखाकर अपने राज्य भर के सरकारी नौकरों को भिजवाया। उनका आदेश था प्रत्येक गांव में नए आवास स्थान बनाए जाएं और 5-7 नए घरों में सभी तरह का भोजन संग्रह कर लिया जाए। तुम लोग स्वयं महाप्रभु को इन नव निर्मित घरों में ले जाना। तुम लोग रात दिन अपने हाथों में बेंत लाठी लिए उनकी सेवा में लगे रहना। राजा ने हरिचंदन तथा मर्द राज नामक दो सम्मानित अधिकारियों को आदेश दिया कि इन आदेशों के पालन करने के लिए जो भी आवश्यक हो करें। राजा ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि नदी के तटों पर एक नई नाव रखें और जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करें या नदी के उस पार जाएं, वहां वहां वे स्मृति स्तंभ स्थापित कर दें और उस स्थान को तीर्थ स्थल बना दें। राजा ने कहा मैं वही वही स्नान किया करूंगा और मुझे मरने भी वही देना। राजा ने आगे आदेश दिया चतुर्द्वार पर एक नया वास स्थान तैयार कराना। हे रामानंद अब आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। जब राजा ने सुना कि महाप्रभु उस दिन संध्या समय चले जाएंगे तो उसने तुरंत ही कुछ ऐसे हाथी लाए जाने का प्रबंध कर दिया जिनकी पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे हो। फिर महल की सारी स्त्रियां उन हाथियों पर बैठ गई। ये सारी स्त्रियां उस मार्ग में पंक्ति बांध कर प्रतीक्षारत रही जिससे होकर महाप्रभु जाने वाले थे। उस शाम को महाप्रभु अपने भक्तों सहित वहां से चल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्रोत्पला नदी में स्नान करने गए तो सारी रानियों तथा स्त्रियों ने उन्हें सादर नमस्कार किया। महाप्रभु को देखकर वे सारी स्त्रियां भगवत प्रेम से अभिभूत हो उठी और आंखों से अश्रु गिराते हुए कृष्ण कृष्ण कीर्तन करने लगी। तीनों लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु के समान दयामय कोई नहीं है। उनका दूर से दर्शन करने मात्र से मनुष्य भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाता है। तब महाप्रभु ने एक नई नाव में चढ़कर नदी को पार किया। वे चांदनी रात में चलकर चतुर्द्वार नामक नगर में जा पहुंचे। महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और प्रातः काल उठकर स्नान किया। उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया। राजा की आज्ञा के अनुसार मंदिर का निरीक्षक प्रतिदिन काफी मात्रा में प्रसाद भेज देता था, जिसे कई लोग उठाकर लाते थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और हरि हरि कीर्तन करते हुए चल पड़े। रामानंद राय मर्दराज तथा श्री हरिचंदन सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। महाप्रभु के साथ साथ परमानंद पुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाई, नंदाई तथा अन्य अनेक भक्त थे। इनमें से मुख्य भक्तों के नाम मैंने गिनाए हैं। पूरी संख्या बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि वे क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग न करें। जब गदाधर पंडित से लौट जाने के लिए कहा गया तो वे महाप्रभु से बोले, आप जहाँ भी रहते हैं वही जगन्नाथपुरी है, मेरा तथा कथित क्षेत्र संन्यास नरक में जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने के लिए कहा तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ बार सेवा हो जाती है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आप उनकी सेवा करना बंद कर दोगे तो यह मेरा दोष होगा, अतः अच्छा यही होगा कि आप यहाँ रहकर सेवा कार्य करो, इससे मुझे संतोष मिलेगा। पंडित ने उत्तर दिया, चिंता न करें, सारे दोष मेरे सिर पर होंगे, लीजिए मैं आपके साथ नहीं अपितु अकेले चला जाऊंगा। मैं शची माता को मिलने जाऊंगा किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। इस तरह गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब वे सभी लोग कटक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भुला लिया और वे महाप्रभु के साथ हो गए। गदाधर पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम की घनिष्ठता को कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है। गदाधर पंडित का आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अत्यंत मोहक लगा, फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग की है, क्योंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो, अतएव वह सब अब पूर्ण हो गया। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे द्वारा इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा मात्र है, इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम नीलाचल लौट जाओ। यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे तो तुम मेरी निंदा ही करोगे। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। अतएव भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी ही हैं। तुम जानते हो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अस्त्र ग्रहण न करने की अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर रहा था, तभी वे अपने रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर उसी तरह झपटे जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला दिया। इसी तरह तुम्हारा वियोग सहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े यत्न से तुम्हारे व्रत की रक्षा की है। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण संचार किया। फिर दोनों अत्यंत शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल वापस चले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निमित्त सारे भक्त अपने सभी तरह के कार्य छोड़ देते थे। फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भक्तगण अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को छोड़ दें। ये सब प्रेम के विरोधाभास हैं। जो कोई भी इन घटनाओं को सुनता है उसे शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी टोली याजपुर पहुंची तो महाप्रभु ने उन दोनों सरकारी अधिकारियों को लौट जाने के लिए कहा जो उनके साथ आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया, किंतु रामानंद राय उनके साथ बने रहे। महाप्रभु रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते। राजा के आदेशानुसार सरकारी अधिकारियों ने गांव-गांव में नए घर बनवा दिए और हर एक में अन्न का संग्रह कर दिया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु की सेवा की। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु रेमुणा पहुंचे, जहां से उन्होंने श्री रामानंद राय को भी विदा किया। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। रामानंद राय से वियोग के कारण महाप्रभु की भावनाओं का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। यह प्रायः असहय है, अतएव मैं इसके आगे वर्णन नहीं कर सकता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ पहुंचे तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आया। वह सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनकी सेवा करता रहा। उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत जानकारी भी दी। उसने महाप्रभु को बतलाया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते। मुस्लिम सरकार की सीमा पिछलदा तक है। मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं करता था। राजा प्रताप रुद्र के सरकारी अधिकारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह भी बतलाया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा में रुकना चाहिए, जिससे मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके। इस तरह महाप्रभु नाव से नदी को शांति पूर्वक पार कर सकेंगे। उसी समय मुस्लिम गवर्नर का एक सेवक वेश बदल कर उड़ीसा के खेमे शिविर में आया। उस मुस्लिम जासूस ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुण देखे और उसने मुस्लिम गवर्नर के पास लौटने पर बतलाया। एक सन्यासी अनेक सिद्ध पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। ये सारे संत महात्मा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सभी हंसते नाचते गाते तथा रोते हैं। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं और एक बार देख लेने के बाद वे अपने घर वापस जाने का नाम नहीं लेते। ये सारे लोग पागल जैसे हो जाते हैं। वे केवल कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तथा नाचते हैं। कभी कभी वे रोते भी हैं और भूमि पर लोटते हैं। वस्तुतः इन बातों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, केवल देख कर ही उन्हें समझा जा सकता है। उसके प्रभाव को देख कर मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। यह कहने के बाद वह संदेश वाहक हरि तथा कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वह हंसने रोने नाचने तथा उन्मत्त की तरह गाने भी लगा। यह सुनकर मुस्लिम गवर्नर का मन फिर गया। तब उसने अपने निजी सचिव को उड़ीसा शासन के प्रतिनिधि के पास भेजा। वह मुस्लिम सचिव श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। जब उसने महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार निवेदन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो वह भी प्रेम भाव में विह्वल हो गया। शांत होने पर मुस्लिम सचिव ने अभिवादन करने के बाद उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। यदि आप सहमत हो तो मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने यहाँ पर आए और फिर लौट जाएं। मुस्लिम गवर्नर अत्यंत उत्सुक हैं और उन्होंने आदर पूर्वक निवेदन किया है। यह शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं कि हम युद्ध करेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र अत्यंत विस्मित हुआ। उसने सोचा यह मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को किसने बदल दिया है। अवश्य ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मुसलमान के मन को बदला होगा। उनकी उपस्थिति एवं उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो जाता है। यह सोचकर महापात्र ने मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया, यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है। उससे कहो कि वे आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ बिना हथियार के आना चाहिए। हाँ, वे अपने साथ 5-7 सेवक ला सकते हैं। वह सचिव लौट कर मुस्लिम गवर्नर के पास गया और उसे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। दूर से ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाबा विष्ट होने के कारण वह पुलकित हो उठा। इस तरह महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदर पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तब वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। तब गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? यह अदम जन्म माना जाता है। विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों नहीं जन्म लेने दिया? यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके चरण कमलों के निकट रहना आसान हुआ होता। क्योंकि अब मेरा शरीर व्यर्थ है, अतएव मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। गवर्नर की विनीत बात सुनकर महापात्र को हर्षातिरेक हो आया। उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ की। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अदम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है। इसमें आश्चर्य की क्या बात यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई। आपके दर्शन मात्र से यह सब संभव है। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण भी करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने उससे कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कहा। तब मुस्लिम गवर्नर ने कहा, क्योंकि आपने मुझे कृपा करके अपनाया है, अतः आप कृपया कोई आदेश दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस मुस्लिम गवर्नर ने उन असंख्य पाप कर्मों के फलों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, जिसे उसने इसके पूर्व ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति ईर्ष्यालु रहकर तथा गौवों की हत्या करके अर्जित किया था। तब मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा, हे महोदय, कृपया सुने, श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट तक जाना चाहते हैं। आप उनकी सहायता करें जिससे वे वहां जा सकें। आपके लिए यही पहला बड़ा आदेश है और यदि आप इसे पूरा कर दें तो आप द्वारा यह महान सेवा होगी। इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ उनके सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की और फिर चला गया। वह अत्यधिक संतुष्ट था। गवर्नर के विदा होने के पूर्व महापात्र ने उसका आलिंगन किया और उसे अनेक वस्तुएं भेंट में दी। इस तरह उसने उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। अगले दिन प्रातः काल उस गवर्नर ने अपने सचिव को अनेक अच्छी तरह से सजी हुई नावों के साथ महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। महापात्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की आगवानी की और उनके चरण कमलों की पूजा की। नावों में से एक नाव नई बनवाई हुई थी जिसके बीच एक कमरा बना था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को उसी नाव में बिठा दिया। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को भी विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख कर रोने लगा। तब स्वयं मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़ा। गवर्नर ने समुद्री डाकुओं के कारण साथ में 10 नावे ले ली जिनमें अनेक सैनिक सवार थे। मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर के आगे तक गया। यह स्थान डाकुओं के कारण अत्यंत खतरनाक था। वह महाप्रभु को पिछलदा नामक स्थान ले आया जो मंत्रेश्वर के निकट ही था। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गवर्नर को भी विदा किया। गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक हैं। जो भी इन कार्यकलापों को सुनता है वह धन्य हो जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। महाप्रभु अंततः पानीहाटी पहुंचे और उन्होंने नाव चलाने वाले को कृपाकृत्य के रूप में अपना वस्त्र दे दिया। पानीहाटी गंगा तट पर आया हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर सभी तरह के लोग स्थल पर तथा जल में एकत्र हो गए। आखिरकार श्री चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित अपने साथ ले गए। रास्ते भर में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिससे महाप्रभु बड़ी कठिनाई से राघव पंडित के घर पहुंच पाए। महाप्रभु श्री राघव पंडित के घर केवल एक दिन ठहरे। अगले दिन प्रातः काल भी कुमार हट गए जहाँ श्रीवास ठाकुर रहते थे। श्रीवास ठाकुर के घर से चलकर महाप्रभु शिवानंद सेन के घर गए और बाद में वासुदेव दत्त के घर गए। महाप्रभु कुछ समय तक विद्यावाचस्पति के घर पर रहे किंतु वहाँ पर काफी भीड़ थी। अब वे कुलिया चले गए। जब महाप्रभु माधव दास के घर पर ठहरे तो लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने आए। महाप्रभु वहाँ 7 दिनों तक रुके रहे और उन्होंने सभी तरह के अपराधियों तथा पापियों का उद्धार किया। कुलिया छोड़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर गए। यहीं पर उनकी माता शची माता उनसे मिली और उनका महान दुख दूर हुआ। इसके बाद महाप्रभु रामकेली गांव तथा कानाई नाट चाला नामक स्थान गए। वहां से वे शांतिपुर लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिनों तक रुके। इसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं इन घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा ये पहले ही वर्णित हो चुकी हैं। उसी बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे दोहराने से इस ग्रंथ का आकार बढ़कर असीम हो जाएगा। इन वर्णनों से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह रूप तथा सनातन बंधुओं से मिले और किस तरह नरसिंहानंद ने मार्ग सजाया। मैं पहले ही इस पुस्तक के संक्षिप्त विवरण में इनका वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौटे तब रघुनाथ दास उनसे मिलने आए। सप्तग्राम के निवासी हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दो भाइयों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों ही अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा वैधान्य थे। वे सदाचारी और ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे। वे सम्माननीय कुलीन परिवार के थे और धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। नदिया के रहने वाले प्रायः सारे ब्राह्मण हिरण्य तथा गोवर्धन के दान पर आश्रित थे क्योंकि वे उन्हें धन भूमि तथा गांव देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे, किंतु नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। पहले ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफी सेवा कर चुके थे, इसीलिए महाप्रभु इन्हें बलि भांति जानते थे। रघुनाथ दास गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर वापस आए, तब रघुनाथ दास उनसे मिले थे। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए तो वे प्रेमवश महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरणों से छू दिया। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अत्यधिक सेवा करते थे, फलतः अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से अत्यंत प्रसन्न थे। जब रघुनाथ दास वहां रहते तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। इस तरह रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। रघुनाथ दास को विदा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। घर लौट कर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो उठे। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से बारंबार भागते रहते थे, किंतु उनके पिता उन्हें बांध रखते और वापस लाते रहते। उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली के लिए 5 चौकीदार नियुक्त कर रखे थे। उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर और उनके भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त कर रखे थे। इस तरह 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को निरंतर वश में रखते थे। इस तरह वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके, फलतः वे अत्यंत दुखी रहते थे। जब रघुनाथ दास को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे हैं, तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया। रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपा करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे। यह विनती सुनकर रघुनाथ दास के पिता सहमत हो गए। अनेक नौकर तथा सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यह कह कर भेजा कि वह शीघ्र ही लौट आए। रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। उस अवधि में रात दिन उनके मन में निम्नलिखित विचार घूमते रहे। रघुनाथ दास ने सोचा, मैं इन रखवालों के चुंगल से किस तरह छूट सकूंगा, मैं किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल जा सकूंगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, अब वे रघुनाथ दास के मन की बात समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए इस प्रकार उपदेश दिया, धैर्य करो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भवसागर को पार कर सकोगे। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो, अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा लेंगे। जब मैं वृंदावन की मुलाकात लेने के बाद लौट आऊं, तब तुम मुझे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना पड़ेगा, यह तो कृष्ण ही बतलाएंगे। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को विदा किया। वे अपने घर लौट गए और महाप्रभु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य करने लगे। घर आने के बाद रघुनाथ दास ने सारा पागलपन तथा बाह्य छद्म वैराग्य छोड़ दिया और वे गृहस्थी के कार्यों में बिना आसक्ति के रहने लगे। जब रघुनाथ दास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र गृहस्थ की तरह रह रहा है तो वे अत्यंत सुखी हुए। फल स्वरूप उन्होंने चौकसी में ढील कर दी। तभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों, अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु आदि को एकत्र किया और उन सब का आलिंगन करने के बाद उनसे जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में सबसे मिल चुके थे, अतः उन्होंने सारे भक्तों से विनती की कि वे इस वर्ष जगन्नाथपुरी न आएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन अवश्य जाऊंगा। यदि आप सभी लोग मुझे अनुमति दें तो मैं बिना किसी कठिनाई के यहाँ फिर आ जाऊंगा। महाप्रभु ने अपनी माता के चरण पकड़कर उनसे विनय पूर्वक अनुमति मांगी। उन्होंने महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। श्रीमती शची देवी को नवद्वीप वापस भेज दिया गया और महाप्रभु अपने भक्तों सहित नीलाद्री अर्थात जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने वाले भक्तों ने नीलाचल जगन्नाथपुरी के रास्ते भर उनकी सभी प्रकार से सेवा की। इस तरह महाप्रभु परम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। जगन्नाथपुरी आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के मंदिर का दर्शन किया। फिर तो सारे नगर में यह समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। तब सारे भक्तों ने आकर परम सुख पूर्वक महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने भी उन सब का एक एक करके प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिकी माहिती तथा अन्य सारे भक्त भी महाप्रभु से मिले। गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु सभी भक्तों के समक्ष इस प्रकार बोले, मैंने अपनी माता तथा गंगा नदी का दर्शन करने के लिए ही बंगाल से होते हुए वृंदावन जाने का संकल्प किया था। इस तरह मैं बंगाल गया, लेकिन हजारों भक्त मेरे साथ चल पड़े। लाखों लोग उत्सुकतावश मुझे देखने आए और ऐसी भीड़ हुई कि रास्ते में मुक्त होकर चलना भी कठिन हो गया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैं जिस घर में रुका था वह घर तथा उसकी चाहार दीवारी फूट फूट गई और मैं जिधर देखता उधर विशाल जन समूह ही दिखाई पड़ता था। मैं बड़ी मुश्किल से रामकेली गांव गया, जहां मुझे रूप तथा सनातन दो भाई मिले। ये दोनों भाई महान भक्त तथा कृष्ण कृपा के समुचित पात्र हैं, किंतु सामान्य तौर पर वे हैं सरकारी अधिकारी, राजा के मंत्री। श्रील रूप तथा सनातन शिक्षा भक्ति बुद्धि तथा बल में अत्यंत अनुभवी हैं, फिर भी वे अपने आप को सड़क के तिनके से भी नीच मानते हैं। निसंदेह इन दोनों भाइयों के धैर्य से पत्थर भी पिघल सकता था। उनके आचरण से तुष्ट होकर मैंने उनसे कहा, यद्यपि तुम दोनों उच्च कोटि के हो किंतु अपने आप को निम्न मानते हो, इसीलिए कृष्ण शीघ्र ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। उनसे ऐसा कहकर मैंने उनसे विदा ली। जब मैं विदा हो रहा था तो सनातन ने मुझसे कहा, जब हजारों लोगों की भीड़ किसी का अनुसरण कर रही हो तब इस प्रकार से वृंदावन जाना उचित नहीं है। यद्यपि मैंने यह सुना किंतु उस पर ध्यान नहीं दिया और प्रातः काल मैं कानाई नाटशाला गया, किंतु रात में मैंने सनातन के कहे हुए पर विचार किया। मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि सनातन ने बहुत ठीक कहा था, मेरे साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, अतएव इतने सारे लोगों को देखकर लोग निश्चय ही मेरी निंदा करेंगे कि यह एक और धूर्त है। तब मैं सोचने लगा कि वृंदावन तो एकांत स्थान है, यह दुर्गम और दुर्लभ है, इसलिए मैंने अकेले या फिर बहुत हुआ तो अपने साथ केवल एक व्यक्ति लेकर जाने का निश्चय किया है। माधवेंद्रपुरी अकेले ही वृंदावन गए थे और कृष्ण ने दूध देने के बहाने उन्हें दर्शन दिया था। तब मैं समझ पाया कि मैं खेल दिखाने वाले जादूगर की तरह वृंदावन जा रहा हूँ और यह निश्चय ही ठीक नहीं है। किसी को भी इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अकेले या अधिक से अधिक एक नौकर के साथ वृंदावन जाने का निश्चय किया है। इस तरह मेरी वृंदावन यात्रा बहुत सुंदर होगी। मैंने सोचा मैं वृंदावन अकेले न जाकर सैनिकों को साथ लिए और ढोल बजाते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को धिक्कारा और अत्यंत उत्तेजित होकर मैं गंगा तीर लौट आया। तब मैंने सारे भक्तों को वहां छोड़ दिया और अपने साथ केवल 5-6 व्यक्तियों को रखा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्छी सलाह दो। मुझे बताओ कि मैं किस तरह निर्विघ्न होकर वृंदावन जा सकता हूँ। मैंने यहाँ गदाधर पंडित को छोड़ दिया तो वह अत्यंत दुखी हुआ, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा सका। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से उत्साहित होकर गदाधर पंडित प्रेम भाव में डूब गए। उन्होंने तुरंत ही महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहा। गदाधर पंडित ने कहा, आप जहाँ कहीं भी ठहरते हैं वही वृंदावन है और वही यमुना, गंगा नदियाँ तथा अन्य तीर्थ स्थल हैं। यद्यपि आप जहाँ भी ठहरते हैं वही वृंदावन है, तो भी आप लोगों को शिक्षा देने के लिए वृंदावन जाते हैं, अन्यथा जो आपको अच्छा लगे वही करते हैं। इस अवसर को पाकर गदाधर पंडित ने कहा, अब तो चातुर्मास्य प्रारंभ हो चुका है, अतएव आपको अगले 4 मास जगन्नाथपुरी में ही बिताने चाहिए। यहाँ 4 मास रहने के बाद आप जैसा चाहें कर सकते हैं। वास्तव में आपको जाने या रहने से कोई रोक नहीं सकता। यह कथन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर उपस्थित भक्तों ने कहा कि गदाधर पंडित ने उनकी इच्छा को सही ढंग से प्रस्तुत किया है। सारे भक्तों के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 4 मास तक रुके रहने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर राजा प्रताप रुद्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। उस दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और महाप्रभु ने अन्य भक्तों सहित उनके यहाँ भोजन ग्रहण किया। संभवतः कोई भी साधारण व्यक्ति गदाधर पंडित द्वारा परोसे गए स्नेह पूर्ण भोजन एवं महाप्रभु द्वारा इस भोजन के आस्वादन का वर्णन नहीं कर सकता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं जो अनंत तथा अपार हैं। किसी न किसी प्रकार इनका संक्षिप्त वर्णन किया गया है, इनका विस्तृत वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यद्यपि अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की लीलाओं का सदैव वर्णन करते रहते हैं, किंतु वे किसी एक लीला का भी पाठ नहीं पा सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने के प्रयास का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।